नमस्कार भारत, तारीख 10 अगस्त दिन सोमवार, मैं हूं मोहनलाल शर्मा। आज खत्म हो रहा है 25 कांग्रेसी सांसदों का निलंबन, पर सवाल यह है कि क्या संसद चलेगी?
हम सरकार के रवैये के आधार पर अपनी रणनीति बनाएंगे। सुबह तक उम्मीद करते हैं कि सरकार कुछ ना कुछ तो कहेगी, ये सही था यही कह दे, प्रधानमंत्री की ऐसी गवाही देना हम मंजूर करते हैं।
अपनी मांगों को लेकर हरियाणा के हिसार जिले के भगाना गांव के दलित परिवारों ने कथित तौर पर धर्म परिवर्तन किया।
छोटा सा जख्म था और वो आज एक फोड़े का रूप ले लिया। कहीं से भी हमारे कोई आस और उम्मीद नहीं थी, जब जाके हमने धर्म परिवर्तन का फैसला।
मैंने इस्लाम कबूल किया है।
किसी के ऊपर कोई दबाव नहीं था, सभी ने अपनी स्वीकृति से किया।
खेल समाचारों के साथ ही होगी अखबारों की चर्चा भी, लेकिन पहले थोड़ा सा ठहरेंगे और सुनेंगे बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार, प्रगति सक्सेना से। संसद का मानसून सत्र गतिरोध, विरोध और निलंबन के बीच आज से फिर शुरू होगा। सदन की कार्यवाही को बाधित करने के लिए लोकसभा अध्यक्ष ने 25 विधायकों को निलंबित भी किया। सत्र के पहले हफ्ते में संसद के दोनों सदनों में कार्यवाही पूरी तरह बाधित रही। विपक्षी दलों ने बार बार उन मंत्रियों के इस्तीफे की मांग की जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, जबकि सरकार इस बात पर अड़ी रही कि इस्तीफे का सवाल नहीं उठता। बहरहाल वो सदन में इस मसले पर बहस के लिए तैयार है। पूर्वी पाकिस्तान में बच्चों के यौन शोषण के मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पंजाब प्रांत के मुख्यमंत्री शहबाज शरीफ ने इस रिपोर्ट की न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं कि देश में सैकड़ों बच्चों का यौन शोषण होता है। स्थानीय मीडिया बिक्री केंद्रों का कहना है कि एक गिरोह छोटे लड़कों के यौन शोषण के वीडियो बनाकर उनके माता पिता से ब्लैकमेल करता है। कसूर शहर के पास के गाँव में इन खबरों के बाद लोगों ने पुलिस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी किया। बांग्लादेश की पुलिस का कहना है कि उन्होंने सुंदरबन के जंगलों में गैरकानूनी तौर से छिपे बाघों के 6 शिकारियों को गोली मार दी है। हाल में ही आए एक सर्वे के मुताबिक बांग्लादेश में अब सिर्फ 100 रॉयल बंगाल टाइगर्स ही बचे हैं। ये संख्या पूर्वानुमान से कहीं कम है। इन मृतक शिकारियों के पास से बंगाल टाइगर्स की खाल बरामद हुई है। स्थानीय पुलिस स्टेशन के इंचार्ज हरेंद्र नाथ सरकार ने बताया, हमने सुंदरबन के अंदर मंदारबाड़ी नगर नहर के पास शिकारियों के गुप्त ठिकाने पर छापा मारा। जब हम उनके करीब पहुंचे तो उन्होंने हम पर गोलियां चलाना शुरू कर दिया। हमने भी गोलियां चलाई। ये लड़ाई करीब 15-20 मिनट तक चली। इस गिरोह के 6 लोग मारे गए। हमने उनके पास से बाघों की खाल बरामद की है। ऐसा लगता है कि ये बाघ 1 हफ्ते पहले ही मारे गए थे। ये थे हरेंद्र नाथ सरकार के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। इसराइल के सैनिकों ने एक फलस्तीनी को गोली मार दी है जिसने वेस्ट बैंक स्थित एक सर्विस स्टेशन पर एक इसराइली पर चाकू से हमला किया था। इसराइली अधिकारियों का कहना है कि यह व्यक्ति पैर में लगी गोली से मारा गया। जिस इसराइली व्यक्ति पर चाकू से हमला हुआ था उसे कंधे पर हल्की चोट आई है। यहूदी चरमपंथियों के एक घर में आग लगाए जाने से एक शिशु और उसके पिता की मौत के बाद से इस पूरे इलाके में तनाव है। इराक के प्रधानमंत्री हैदर अल अबदी ने सरकारी खर्च कम करने और भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए व्यापक सुधारों की घोषणा की है। इन सुधारों में उपराष्ट्रपति और उप प्रधानमंत्री के पदों को खत्म करना और सरकारी खर्चे को कम करने के सुझाव शामिल हैं। अबदी ने यह भी कहा है कि सरकार के उच्च अधिकारियों के पदों पर नियुक्तियां सांप्रदायिक या पार्टी के कोटे से नहीं की जानी चाहिए। प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल ने इन घोषणाओं को मंजूरी दे दी है, लेकिन संसद से इन पर मुहर लगना अभी बाकी है। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम को आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और इसकी मोबाइल साइट पर भी लाइव सुन रहे हैं। मेरा नाम है मोहनलाल शर्मा। आज एक बार फिर से सबकी नजरें संसद भवन पर होंगी, जहां सदन की कार्यवाही शुरू होगी। आज का दिन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि संसद के मानसून सत्र का ये आखिरी हफ्ता है और लोकसभा में स्पीकर सुमित्रा महाजन के आदेश से 5 दिन के लिए निलंबित कांग्रेस सांसद आज से सदन में लौटेंगे। उनके निलंबन की अवधि पूरी हो गई है, लेकिन अब तक सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बना हुआ गतिरोध दूर नहीं हुआ है। कांग्रेस ललित मोदी प्रकरण पर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के इस्तीफे की मांग पर अड़ी हुई है। संसद में अब तक का कामकाज हंगामे की भेंट चढ़ चुका है। सवाल यह है कि क्या आज भी संसद में कामकाज हो पाएगा या नहीं। हमारे सहयोगी वात्सल्य राय ने यही सवाल विपक्षी कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा के सामने रखा।
जिम्मेदारी सरकार की है कि सुचारू रूप से चले, और ये बड़ा इस तरह का फैसला बहुत कम हमारे देश के इतिहास में देखा गया है लोकसभा में कि 25 लोगों को सस्पेंड कर दिया गया। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 साल में और खास तौर पे पिछले 5 साल में 180 दिन संसद की कार्रवाई को नहीं होने दिया, ये कह के लोकतंत्र का ही रास्ता अच्छा है, और पिछले एक साल में हमने एक दिन भी संसद की कार्रवाई में कोई बाधा नहीं डाली। मगर जब कुछ ऐसे सवाल आगे खड़े हुए देश के सामने जिसमें काले धन के देश के सबसे प्रमुख आरोपी ललित मोदी जी के बचाव में कुछ भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख नेताओं का नाम सामने आया, तो हमने सरकार से सवाल पूछे कि इन बातों के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं। जब व्यापम घोटाले की बात सामने आई तब हमने सरकार से सवाल पूछे कि इन बारे में बातों में आप क्या कहना चाहते हैं, और जब जवाब नहीं मिले तब मजबूरन हमको ऐसा रास्ता अख्तियार करना पड़ा जिसका मैं खुद भी समर्थक नहीं हूँ, मगर हमारे पास कोई और रास्ता नहीं बचा और इसका बड़ा खेद मुझे रहेगा। और सोमवार को मैं उम्मीद करूंगा कि सरकार हमारी बातों का सुचारू ढंग से जवाब देगी और संसद की कार्रवाई चलाएगी।
दीपेंद्र जी, जैसे सरकार का रुख है कि वो कहते हैं कि हम हर मुद्दे पर चर्चा करने को तैयार हैं, लेकिन आपकी पार्टी से कहा गया है कि पहले रेजिग्नेशन फिर डिस्कशन।
देखिए चर्चा की बात तो क्या रह गई, अब सुषमा जी का भी वक्तव्य आया तो उसमें कोई नई बात नहीं आई, नई तथ्य नहीं आया। ये बात, ये जो मामला है इसको आप समझे कि संसद सत्र के दौरान नहीं उठा था, संसद सत्र के एक महीने पहले ये मामला पब्लिक आई में आ गया था। सुषमा जी का ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे मदद की गई, ये तो एक महीने से रिपीट हो रही थी बात, और हम गलत कह रहे हैं तो हम उसके लिए तैयार हैं। अब तो सारे तथ्य सरकार के सामने, क्या कार्रवाई होगी वो बात सरकार बताए, प्रधानमंत्री जी बताए। हमारा मांग इस्तीफा का है, मगर सरकार भी तो अपना पक्ष रखे कि क्या कार्रवाई करेंगे, मगर केवल अपने बहुमत के घमंड में सारी बातों को रफा दफा करके और ये माने ये आंख हम पे पट्टी बांध के देश चलाए।
दीपेंद्र जी, मेरा आखिरी सवाल ये है कि सोमवार से आप लोग सदन में लौटेंगे तो क्या कोई बदलाव नजर आएगा विपक्ष की रणनीति में?
हम सरकार के रवैये के आधार पे अपनी रणनीति बनाएंगे। सुबह तक उम्मीद करते हैं कि सरकार कुछ ना कुछ तो कहेगी, ये सही था यही कह दे प्रधानमंत्री की, ठीक है ऐसी गवाही देना हम मंजूर करते हैं, प्रधानमंत्री यही कहे मगर कुछ तो कहे।
ये थे कांग्रेसी सांसद दीपेंद्र हुड्डा, जो कह रहे हैं कि संसद में क्या होगा ये सरकार के रुख से ही तय होगा। दूसरी ओर सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी भी अपने रुख पर अड़ी हुई है। भारतीय जनता पार्टी के नेता कांग्रेस पर लगातार तीखे हमले कर रहे हैं। अल्पसंख्यक मामलों के राज्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने अपने ब्लॉग में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को गूंगा गुड्डा कह डाला। वात्सल्य राय ने मुख्तार अब्बास नकवी से संपर्क साधा और पूछा कि उन्होंने कांग्रेस उपाध्यक्ष को ऐसी उपमा आखिरकार क्यों दी और आज सदन में काम होगा या नहीं होगा, सरकार का रुख क्या होगा।
देखिए एक चीज तो बहुत साफ है कि कांग्रेस पार्टी और विशेष तौर से जो ग्रैंड ओल्ड पार्टी के ब्रांड न्यू लीडर हैं, उनका जो नॉनसेंस से लेकर के न्यूसेंस तक का सफर है, वो सफर जो है वो कहीं ना कहीं जमीन की हकीकत और संसदीय जो व्यवस्था है उससे कोसों दूर है। आप संसद में गूंगे गुड्डे की तरह भूमिका निभाएंगे और सड़क के सुरमा बनने की कोशिश करेंगे तो ऐसी स्थिति में निश्चित तौर से देश ये जानना चाहेगा कि आप विकास को रोकना चाहते हैं या आप जो है वो विनाश के रास्ते पे जाना चाहते हैं।
कांग्रेस की शिकायत ये भी है कि प्रधानमंत्री किसी मुद्दे पर बोलने को तैयार नहीं है।
प्राइम मिनिस्टर सभी मुद्दों पर बोलने को तैयार हैं, आप जो है वो मुद्दे लाइए ना, क्या मुद्दे हैं आपके?
तो
आप
मुद्दों से उनका कहना यह है कि चाहे व्यापम की बात हो या ललित मोदी की मदद की बात हो, इन पर प्रधानमंत्री कुछ कहने को तैयार नहीं।
ये इशू जो है पार्लियामेंट में इशू है, अब आप चाहते हैं कि संसद के बाहर वो इस मुद्दे पे बोले। अरे भाई आपको एक मौका है, पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है और ये परंपरा है और ये नियम भी है कि ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर अगर कोई प्राइम मिनिस्टर को भी इंटरवीन करना है तो वो पार्लियामेंट के अंदर करेंगे।
मानसून सत्र का आखिरी सप्ताह शुरू हो रहा है
जी।
जिन कांग्रेस के जिन्हें सस्पेंड किया गया था उनके सस्पेंशन की अवधि भी खत्म हो रही है, तो आपको उम्मीद है कि विपक्ष अब जब दोबारा संसद में लौटेगा तो उनकी भूमिका में कुछ बदलाव आएगा?
देर आए दुरुस्त आए की स्थिति में अगर कांग्रेस के लोग रहते हैं और ये बात महसूस करते हैं कि उनके इस व्यवहार से, इस वजह से देश के विकास में कहीं ना कहीं रोड़ा अटका है, देश के विकास के रास्ते में बाधा पड़ी है, तो हो सकता है वो सोचे, हमारी तो बातचीत सबसे हो रही है और कांग्रेस के लोगों से भी बात कर रहे हैं, यही कह रहे हैं कि भाई ऐसा है कि आप रिफॉर्म के रास्ते में क्यों रोड़े अटका रहे हैं।
ये थे अल्पसंख्यक मामलों के राज्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी। हरियाणा के हिसार जिले के भगाना गांव के करीब 100 दलित परिवारों ने कथित तौर पर धर्म परिवर्तन कर लिया है। धर्म बदलने वाले दलित परिवार गांव के दबंगों के कथित उत्पीड़न के खिलाफ जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं। उनका आरोप है कि गांव के दबंग उन्हें सरकारी योजना के तहत दी जा रही जमीन हासिल नहीं करने दे रहे हैं। उनका आरोप है कि सरकार और प्रशासन भी उनकी सुध नहीं ले रहा। उधर हिसार के जिला प्रशासन का कहना है कि धरने पर बैठे लोगों से लगातार बात जारी है। वात्सल्य राय जा पहुंचे जंतर मंतर।
हमारे साथ इस समुदाय के कुछ लोग हैं, उनसे हम जानते हैं कि आखिर किस वजह से उन्होंने धर्म परिवर्तन का फैसला लिया।
मेरा नाम रामफल जांगड़ा है और हमने इस्लाम कबूल किया है। जख्म छोटा सा जख्म था और वो आज एक फोड़े का रूप ले लिया, जिससे हम बिल्कुल किसी कहीं से भी हमारे कोई आस और उम्मीद नहीं थी, जब जाके हमने धर्म परिवर्तन का फैसला।
मेरा नाम जगदीश कादला। मेरे पूरे समाज के लोगों ने धर्म परिवर्तन किया है।
मैंने इस्लाम कबूल किया है।
धर्म परिवर्तन तो मतलब किसी के ऊपर कोई दबाव नहीं था, सभी ने अपनी स्वीकृति से किया।
मेरा नाम वीरेंद्र सिंह बागोरिया है। हमारा दिल जो है नहीं मान रहा, और ये जो काम जो हमने इस्लाम में जाने का काम किया है, ये हमारे दिल की आवाज है।
हरियाणा के हिसार जिले के भगाना गांव के रहने वाले इन लोगों का दावा है कि इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया है, मजहब बदल गया है, लेकिन इनमें से ज्यादातर ने अपने नाम नहीं बदले हैं। शनिवार को जंतर मंतर पर धर्म बदलने के पहले ही ये लोग अपने इस कदम का ऐलान कर चुके थे। सतीश काजला, जो कि अब अब्दुल कलाम बन चुके हैं, वो बताते हैं कि करीब 100 दलित परिवारों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर ही धर्म बदला।
इसमें हमारे एक साथी है अब्दुल रजाक अंबेडकर, उसका कोई रिलेटिव था उसका, वो हमारे को यहाँ कलमा पढ़ाने के लिए आया था, और उसका ये बताया था कि जो इस्लाम में प्रवेश करने के लिए कलमा पढ़ा जाता है।
नए मजहब की सबसे अहम पहचान सिर की टोपी है, जिसे जंतर मंतर पर धरना दे रहे सभी पुरुष हर वक्त सिर पर लगाए रहते हैं। सतीश जिन अब्दुल रज्जाक को धर्म परिवर्तन में मददगार बताते हैं, उनका कहना है कि वो सिर्फ कानूनी तौर पर भगाना गांव के दलितों को इंसाफ दिलाना चाहते हैं।
मैं सिर्फ इनको एक सपोर्ट कर रहा हूँ बस, लीगल वे से जो काम चल रहा था मैं उसके लिए सपोर्ट इनके लिए करना चाह रहा हूँ बस।
धर्म बदलने वालों का दावा है कि वो करीब 4 साल से इंसाफ की जंग लड़ रहे हैं। सतीश काजला उर्फ अब्दुल कलाम बताते हैं कि 4 साल पहले केंद्र और राज्य सरकार ने दलित और पिछड़े समाज को गांव की जमीन बांटने का प्रस्ताव रखा, लेकिन गांव के कथित दबंगों ने दलितों को जमीन हासिल होना तो दूर बल्कि गांव से पलायन के लिए मजबूर कर दिया।
गांव की हमारी जो है 280 एकड़ सामला जमीन है, और जो गांव के दबंग हट हैं उन्होंने ये कह के कि हमारे खेतों से कटी हुई जमीन है, इस पर आपका जो भूमि इन दलित पिछड़े हैं इसका कोई आपका अधिकार नहीं है। जब हमने उसकी कंप्लेंट दी तो उन्होंने हमारा जो सोशल बायकॉट करके हमारे ऊपर दबाव डाला कि ये तुम कंप्लेंट वापिस ले, नहीं तो गांव में नहीं रहने देंगे। 3 दलितों के दरवाजे बिल्कुल बंद कर दिए थे, और प्रशासन की तरफ से कोई सुनवाई न होने के बाद में हमने मजबूरन 21 मई 2012 को गांव से 137 परिवार ने पलायन करना पड़ा।
सतीश और उनके साथ आंदोलन कर रहे लोगों का दावा है करीब 100 परिवार 3 साल से हिसार और 1.5 साल से जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि हिसार प्रशासन का कहना है कि धरने पर बैठे परिवारों की संख्या 50 से ज्यादा नहीं। प्रशासन का ये भी दावा है कि इन लोगों से लगातार बात होती रही है। हालांकि गांव के बाकी लोगों के साथ धर्म बदलने वाले राजेंद्र कहते हैं कि मजहब बदलने के बाद से ही उनकी मांगों पर सुनवाई शुरू हुई है।
अभी तक इस हिंदू धर्म में इतने जो सिस्टम जो आए हैं, हर हर आदमी से मिले हैं, हर सरकार से मिले हैं, हर आयोग से मिले हैं, हर उसके बाद इसके इस धर्म के अंदर तो थोड़े अगर पर पां रखते ही और इस धर्म से हम इतना कुछ मिल यहाँ लोग आने आते हैं तो बहुत बड़ी बात।
लेकिन क्या नया मजहब समस्याओं के समाधान का रास्ता निकाल सकता है?
धर्म परिवर्तन से समस्याओं के समाधान कि मतलब कोई गारंटी तो नहीं है।
नहीं, समस्याओं का समाधान हो ना हो, हम इस धर्म से बिल्कुल उग चुके थे, इसलिए हमने ये धर्म परिवर्तन किया है। लड़ाई आगे और जारी रहेगी।
अब ये वक्त ही तय करेगा कि इस बदलाव के बाद उनके हालात बदलते हैं या नहीं, लेकिन उनके मन में एक नई उम्मीद जरूर जगी है। वात्सल्य राय, BBC जंतर मंतर, दिल्ली।
जैसा कि आपने सुना कि धर्म परिवर्तन करने वाले दलित परिवारों का आरोप है कि प्रशासन भी उनकी सुनवाई नहीं कर रहा। वात्सल्य राय ने इसे लेकर हिसार के डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर चंद्रशेखर खरे से बात की और पूछा कि धरना दे रहे लोगों की आखिरकार सुनवाई क्यों नहीं हो रही, आप बात क्यों नहीं कर रहे।
काफी लंबे टाइम से इस मामले में बात चल रही है। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट ने भी इसका संज्ञान लिया था, हरियाणा सरकार ने भी संज्ञान लिया था और इवन हाई कोर्ट तक भी ये मुद्दा गया था। बातचीत काफी बार हुई है। जो जमीन की बात है, हरियाणा सरकार की एक पॉलिसी है सौगत के प्लॉट्स की स्कीम, तो उसमें गांव के पास भी प्लॉट्स काटे जाने की प्रधान पंचायत ने किया था। उस हिसाब से 200 में से कम 100 परिवारों ने वहां पे रजिस्ट्री करा भी ली और रहने भी लग गए हैं। कुछ परिवार हैं जिनको लगता है कि गांव में सेफ नहीं है, उन्होंने किसी दूसरी साइट पे मांगी, जिसके बारे में इवन एससी कमीशन ने भी कहा था कि वो एक ठीक साइट नहीं है जहां पर प्लॉट काटे जा सके।
आपको क्या लगता है कि ये हिसार में और जंतर मंतर पर इनका धरना क्यों चल रहा है और 100 परिवारों ने धर्म अपना क्यों बदल लिया, क्या कारण हो सकता है?
पहली बात तो मैं क्लियर करना चाहूंगा, 100 परिवार बिल्कुल नहीं है। जैसा मेरी नॉलेज में है 50-55 लोगों की ही मेरे सामने बात आई है, और बगाना गांव के उसमें 25 से 30 लोग ही हैं। बाकी अगर धर्म परिवर्तन वाली बात है, मेरे हिसाब से वो एक पर्सनल मुद्दा है, हर आदमी की जो इच्छा है वो अपने हिसाब से अपना धर्म बदल सकता है।
ये लोग क्यों गांव नहीं आ रहे हैं, जब जमीनें मिल रही हैं तो ये ले क्यों नहीं रहे हैं? ये कह रहे हैं कि जिला प्रशासन से लेकर सरकार तक इनकी कोई सुनवाई नहीं होती है।
नहीं, हमारे दरवाजे हमेशा खुले हैं, अगर डिमांड वाजिब है तो हम बातचीत के लिए तैयार हैं, निस्तारण के लिए बिल्कुल तैयार हैं।
क्या आखिर इनकी ऐसी क्या मांगे हैं जो गैर वाजिब हैं, जिन्हें प्रशासन पूरा नहीं कर पा रहा है?
पहली जो मुद्दा जहां स्टार्ट हुआ था वो एक चौक था गांव के बीच में, जिस पर ये कहा गया था कि सवर्ण जाति के लोगों ने वहां पे कब्जा किया हुआ है, तो उस कब्जे को तोड़वा दिया गया था और वहां का जो मलबा था वो मेरी देखरेख में 3 महीने पहले मैंने वो मलबा भी हटवा दिया था। तो अब वो चौक बिल्कुल खाली है, जो पहली डिमांड जिससे मुद्दा स्टार्ट हुआ था वो चौक अब बिल्कुल खाली है। जो दूसरी डिमांड थी वो ये थी कि सौगत के प्लॉट हैं वो हिसार के पास बगाना गांव की पंचायत की जमीन पड़ती है, वहां दिए जाएं। कहीं ना कहीं अगर आप इसमें ध्यान से सोचेंगे तो वहां पर जो जमीन के रेट हैं वो ज्यादा हैं। ये भी कहा जा सकता है कि हमें गांव से खतरा है तो हम दूर रहना चाहते हैं, ये भी सोचा जा सकता है। तो इस मामले में एससी कमीशन ने भी यही कहा, एक सरबन सिंह कमेटी बैठी थी उसने भी यही कहा है कि गांव के पास ही घर बनाए जाने उचित हैं, और उस मामले में वहां के ज्यादातर दलितों ने वहां पर घर अपने बना भी लिए हैं। अब कुछ लोगों की अगर इस मामले में अगर इच्छा नहीं है तो इस हिसाब से हम, वैसे भी पंचायत एक ऑटोनोमस बॉडी है, वो पंचायत जहां डिसाइड करती है हम प्लॉट वहीं दे सकते हैं।
इनका कहना है कि पंचायत इनकी सुनवाई नहीं करती, बल्कि इन लोगों के आरोप तो ये भी हैं परिवार की महिलाओं के साथ गैंगरेप हुए हैं, उसकी भी सुनवाई प्रशासन की ओर से नहीं हुई है। तो मैं प्रशासन की ओर से ये जानना चाहता हूँ, आप क्योंकि वहाँ के DC हैं, कि आखिर इस मुद्दे को खत्म करने के लिए किसी स्तर से कोई पहल क्यों नहीं हो रही, आखिर ये इतना लंबा धरना चलता क्यों
नहीं है? हम इनसे हमेशा मिलते जुलते रहे हैं, लेकिन बात जो आपने वो रेप वाली कही है उस मामले में मैं कहना चाहूंगा कि जिनके खिलाफ भी इन्होंने नाम दिए थे कि ये रेप किए गए हैं, उन सभी के खिलाफ FIR की गई है और वो केस कोर्ट में पेंडिंग है।
समय कोई डायलॉग चल रहा है प्रशासन के बीच में या सरकार के स्तर पर या किसी तरीके से धरना खत्म करने?
अभी फिलहाल वो परिवार दिल्ली में है, हिसार में अभी नहीं आए हैं। एक तरह से हम बिल्कुल तैयार हैं, हम बातचीत के लिए भी तैयार हैं, और पर हम ये इस मामले में बात नहीं करेंगे कि आप हिंदू हैं, मुसलमान हैं, भारत एक सेक्युलर देश है, आप जो धर्म अपनाना चाहें वो आपकी पर्सनल इच्छा है, लेकिन अगर आपको कुछ थ्रेट परसेप्शन है, कोई और दिक्कत है, तो हम बातचीत के लिए हमेशा तैयार हैं और उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए भी तैयार हैं।
ये थे हिसार के डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर चंद्रशेखर खरे, जिनसे की बात कर रहे थे हमारे सहयोगी वात्सल्य राय। और अब कार्यक्रम में अखबारों के पन्ने पलटने का वक्त हो गया है। अखबार आप पढ़ चुकी हैं, बताइए क्या कह रहे हैं अखबार?
जी मोहन जी, सबसे बड़ी खबर तो आज मोदी जी की जो बिहार में गया में रैली हुई उसकी है, उसमें उन्होंने कहा कि जंगल राज आया तो बिहार बर्बाद हो जाएगा। मोदी जी और नीतीश और लालू के बीच तनातनी चल रही है, उसके बाद नीतीश ने कहा कि BJP माने बड़का झूठा पार्टी, तो ये सभी अखबारों में ये खबर ली गई है। उसके बाद आप पार्टी की MLA हैं अलका लामा, उनके नशा विरोधी मुहिम के दौरान उनके ऊपर हमला किया गया, घायल हुई, आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं। इसके अलावा जो है वो संसद में कामकाज के आसार कम नजर आ रहे हैं, ये भी सभी अखबारों ने खबर ली है कि संसद का मानसून सत्र फिर शुरू हो रहा है और उसमें हंगामे की भेंट चढ़ जाएगा, ये ऐसा विशेषज्ञ कह रहे हैं। जनसत्ता में बारिश और बाढ़ से बेहाल हुए लोग, लद्दाख में 400 सैलानियों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया सेना ने, और कैदी ने टॉप की इग्नू की परीक्षा, ये वाराणसी की खबर है। दैनिक जागरण ने खबर ली कि भगाना के पीड़ितों की, जिस पर अभी आप एक रिपोर्ट सुनाई गई थी श्रोताओं को, दैनिक जागरण में ही खबर है किसानों पर चली लाठियां, 6 घायल, ये स्वराज अभियान के योगेंद्र यादव जय किसान यात्रा को लेकर गुड़गांव से जंतर मंतर पहुंचे थे, वहां लाठी चार्ज में घायल हुए हैं, योगेंद्र यादव को भी चोटें आई हैं। राजनाथ सिंह ने जीएसटी पर सबका समर्थन मांगा है ताकि इसको स्वीकृति मिल जाए। और एक दिलचस्प खबर यह है कि घरेलू सहायकों के भी अच्छे दिन आएंगे। ऐसी कोशिश की जा रही है कि उन्हें मासिक वेतन के अलावा ईएसआई, भविष्य निधि और सवेतन अवकाश की सुविधा भी मिले।
जी।
नवभारत टाइम्स में एक दिलचस्प खबर है कि सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग ली थी एक दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्रा ने पुलिस से, और वो काम आई। उनकी उनके मोबाइल फ़ोन को चुरा कर भाग रहे लुटेरों को उन्होंने पकड़ लिया। और मैं पूरे अखबार की जो खबरें हैं उसका जो अंत मैं करूँगी एक बहुत ही अच्छी खबर से कि भारतीय सेना जो है वो सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट फेसबुक पर सबसे लोकप्रिय साबित हुई है। इसने FBI, पाकिस्तानी सेना और नासा तक को पछाड़ दिया है।
बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया प्रगति आपका। और अब कार्यक्रम में हम सुनते हैं BBC उर्दू संवाददाता वसुतुल्लाह खान की डायरी।
कबीर खान की फिल्म बजरंगी भाईजान को तो यहाँ पाकिस्तान में हाथों हाथ लिया गया, मगर जरूरी तो नहीं कि कबीर खान की अगली फिल्म फैंटम का भी वैसा ही स्वागत हो। मुंबई हमलों के मुजरिमों की खोज के विषय पर बनने वाली फैंटम के हीरो सैफ अली खान की एक पिछली फिल्म एजेंट विनोद को भी पाकिस्तान में नुमाइश की इजाज़त नहीं मिली थी, और लगता है सैफ मियाँ इस बार भी कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में जलवा नहीं दिखा पाएंगे। इसकी वजह पाकिस्तानी सेंसर बोर्ड से ज़्यादा खुद फैंटम की प्रोडक्शन टीम है। आखिर कबीर खान ने जमातुल दावा के लीडर हाफिज़ मोहम्मद सईद को फिल्म में क्या सोच के कास्ट किया? अब भुगतो, हाफिज़ मोहम्मद सईद ने लाहौर हाई कोर्ट में ये पिटीशन डाल दी है कि आतंकवाद को बहाना बना के दरअसल कबीर खान ने पाकिस्तान और मेरी जमातुल दावा को बदनाम करने की कोशिश की है, इसलिए पाकिस्तान में फैंटम की नुमाइश रोकी जावे। मैं तब से सोच रहा हूं कि पाकिस्तान छोड़ के जहां जहां भी ये फिल्म दिखाई जाएगी वहां वहां हाफिज सईद कैसे फिल्म रुकवाएंगे, और ख़ुद पाकिस्तान में भी लोग बास थोड़ी आएंगे। सिनेमा में ना देख सके तो 35 रुपये की CD पे बदनामी देखेंगे। तो फिर चुपके चुपके बदनाम होने से अच्छा नहीं कि एक बार मुन्नी की तरह खुल के बदनाम हो लिया जाए? और जब हाफिज साहब ने कुछ गलत किया ही नहीं तो फिर बदनामी कैसी, जलने वाले जला करें। बहरहाल ये कबीर खान वालों और हाफिज सईद का आपसी मामला है, कैसे सुलटेगा हमें क्या। लेकिन कबीर खान की बजरंगी भाईजान के बाद से यहाँ कराची के ईदी ट्रस्ट में 12 साल से रहने वाली 23 वर्षीय गीता के मामले पे जो हिलजुल हुई वो किसी भी फिल्मी से कम नहीं। या तो गीता का एक भी दूर परे का रिश्तेदार सामने नहीं आ रहा था, या अब 4-4 खानदान कह रहे हैं कि गीता हमारी बेटी है। अब अब्दुस्सत्तार ईदी की बेगम बिल्कीस ईदी इस उधेड़ बुन में हैं कि क्या करें। कहीं ये ना हो कि मंटो की कहानी टोबा टेक सिंह के हीरो की तरह गीता भी आखिर में तंग आके कह बैठे, ना मुझे हिंदुस्तान में रहना है ना पाकिस्तान में, मुझे तो बस ईदिस्तान में रहना है। वैसे भी पिछले 13 वर्ष में गीता की आदतें बहुत बिगड़ चुकी हैं। वो अपने कमरे में बने छोटे से मंदिर में भगवान की पूजा भी करती है और रमज़ान में रोज़े भी रखती है। इसलिए मुझ जैसों की सलाह तो ये है कि गीता को भारत और पाकिस्तान मुश्तरका नागरिक मान लें, जब मन चाहे आए जाए। कहते हैं अकलमंद को इशारा काफ़ी है, और भगवत गीता की तरह हमारी गीता भी इशारों में ही बात करती है। है कोई गज भर की जबान वाला जो बेजबान गीता का इशारा समझ सके?
ये थी BBC संवाददाता वसुतुल्लाह खान की डायरी। और अब कार्यक्रम में उन खबरों की बात जिन पर रहेगी आज हमारी नजर।
भूमि अधिग्रहण विधेयक की पड़ताल करने वाला एक संसदीय पैनल आज इसके 3 मुख्य प्रावधानों पर सर्वसम्मति बनाने की कोशिश करेगा। इस 30 सदस्यीय पैनल की अध्यक्षता BJP के सांसद SS अहलूवालिया कर रहे हैं। सरकार ने भी इस पैनल की सिफारिशों को स्वीकार करने की इच्छा जताई है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू विशाखापट्टनम में मेक इन इंडिया मेड इन आंध्र प्रदेश कार्यक्रम के तहत भारत का पहला शाओमी निर्मित फोन लॉन्च करेंगे। इस मौके पर शाओमी भारत में अपने विस्तार की योजनाओं की भी घोषणा करेगा। केरल के समुद्री तट पर मछुआरों को मारने के आरोपी 2 इतालवी नौ सैनिकों के मामले में अंतर्राष्ट्रीय ट्रिब्यूनल में भारत का पक्ष 2 वकील रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता में कुशल इन 2 वकीलों एलन पेलेंट और आर बंडी को भारत का पक्ष रखने के लिए चुना गया है। जर्मनी के हैम्बर्ग में आज से 2 दिन तक समुद्री कानून का अंतर्राष्ट्रीय ट्रिब्यूनल इस केस की सुनवाई करेगा। ग्रीस के मंत्री और अंतर्राष्ट्रीय कर्जदाताओं के प्रतिनिधि एथेंस में नए बेल आउट समझौते पर अपनी बातचीत जारी रखेंगे। इस समझौते का मसौदा तैयार करने की अंतिम तारीख 20 अगस्त निर्धारित की गई है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन रूसी सेंट्रल बैंक की प्रमुख एल्विरा नेबियोलिना से मॉस्को में मुलाकात करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में रूबल की घटती कीमत के बावजूद सेंट्रल बैंक रूसी अर्थव्यवस्था को संभालने की कोशिश कर रहा है। बर्लिन में जर्मनी के विदेश मंत्री फ्रैंक वाल्टर श्टाइनमायर सऊदी अरब के विदेश मंत्री अदल अल जुबैर से मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं में ईरान के परमाणु समझौते और सीरिया में युद्ध जैसे क्षेत्रीय मुद्दों पर बात होगी। जॉर्डन की राजधानी अमान में सहायता संगठन डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स आंतरिक तनाव और हिंसा से ग्रस्त यमन के मानवीय और स्वास्थ्य संबंधी हालात पर एक समाचार सम्मेलन आयोजित कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र जिनेवा में आज लीबिया की शांति वार्ता के ताजा दौर का आयोजन कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र में लीबिया के प्रतिनिधि बर्नार्डिनो लियोन देश के प्रतिद्वंदी गुटों के साथ राजनीतिक समझौते के प्रयास जारी रखना चाहते हैं।
और अब कार्यक्रम में सुन लेते हैं खेल की खबरें।
खेल समाचारों के साथ मैं हूं आदेश कुमार गुप्त। इंडोनेशिया के जकार्ता शहर में आज से विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप शुरू होने जा रही है। इसमें भारत की चुनौती मुख्य रूप से महिला एकल वर्ग में दूसरी वरीयता हासिल साइना नेहवाल और 11वीं वरीयता हासिल पीवी सिंधु पर रहेगी। महिला युगल वर्ग में पिछले दिनों कनाडा ओपन जीतने वाली अनुभवी जोड़ी ज्वाला गुट्टा और अश्विनी पोनप्पा भी कुछ उलटफेर करने का दमखम रखती है। वैसे ये जोड़ी विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीत चुकी है। पुरुष एकल वर्ग में तीसरी वरीयता हासिल के श्रीकांत और 10वीं वरीयता हासिल पी कश्यप भी जोश के साथ अपना दावा पेश करेंगे। वैसे आज कई भारतीय खिलाड़ी अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। पी कश्यप पहले दौर में नीदरलैंड्स के एरिक मीट्स का सामना करेंगे, जबकि मिश्रित युगल में तरुण कोना और एन सिक्की रेड्डी की जोड़ी चीन ताइपे के लियाओ मिनचुन और चेन सियाओ युआन का सामना करेंगे। महिला युगल में प्रदन्य गडरे और एन सिक्की रेड्डी जर्मनी की इसाबेल हर्ट्रिच और ब्रिगिट मिचेल से भिड़ेंगी, तो पुरुष युगल वर्ग में प्रणय जैरी चोपड़ा और अक्षय दिवालकर का सामना रूसी जोड़ी निकिता खाकिमोव और वेस्ली कुज़नेत्सोव से होगा। इनके अलावा पुरुष एकल वर्ग में ही एचएस प्रणय ब्राजील के एलेक्स युआन जोक का सामना करेंगे। उधर यूरोप का दौरा कर रही भारतीय हॉकी टीम आज स्पेन के साथ अपना पहला और दौरे का तीसरा मैच खेलेगी। इससे पहले भारत ने फ्रांस के खिलाफ खेले गए दोनों मैच अपने नाम किए। भारत स्पेन के खिलाफ 3 मैच खेलेगा। इससे पहले भारत ने स्पेन का सामना विश्व हॉकी लीग सेमीफाइनल्स में किया था, जहां उसे स्पेन के हाथों 4-2 से हार का सामना करना पड़ा था। भारतीय हॉकी टीम को लेकर टीम के कोच रोलेंट ऑल्टमंस ने कहा है कि फ्रांस के खिलाफ लगातार 2 जीत से टीम का आत्मविश्वास बड़ा है। वहीं चेन्नई में आयोजित की जा रही त्रिकोणीय एक दिवसीय क्रिकेट सीरीज के तीसरे मैच में कल भारत ए ने दक्षिण अफ्रीका ए को बेहद आसानी से 8 विकेट से मात दी। भारत ए के सामने जीत के लिए 245 रनों का लक्ष्य था, जो उसने कप्तान उन्मुक्त चंद के 90 और अपने जोड़ीदार सलामी बल्लेबाज मयंक अग्रवाल के 130 रनों की मदद से केवल 2 विकेट खोकर हासिल कर लिया, वो भी 37.4 ओवर में ही। वहीं हरारे में खेले गए एकमात्र 2020 मुकाबले में कल न्यूजीलैंड ने जिम्बाब्वे को 80 रन से मात दी।
आप खेल समाचार सुन रहे थे और अभी अभी एक बड़ी खबर आ रही है। झारखंड के देवघर में भगदड़ से 11 लोगों की मौत की खबर आ रही है। वैद्यनाथ मंदिर में इस भगदड़ में ये भगदड़ हुई, जिसमें कि बताया जा रहा है कि 11 लोग मारे गए हैं। देवघर के उपायुक्त अमित कुमार ने बताया है कि ये घटना सोमवार सुबह यानी कि आज सुबह 4:30 बजे उस समय हुई जब कांवड़िए जलाभिषेक के लिए कतार में लगे हुए थे। उनके मुताबिक श्रद्धालुओं के बीच आगे आने की होड़ में ये भगदड़ हुई। देवघर के उपायुक्त का कहना है कि इस घटना में 17 लोग घायल हैं, जिन्हें स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पिछले दिनों भी इसी मंदिर में भगदड़ हुई थी, जिसमें बताया जा रहा है कि 12 लोग घायल हुए थे। इससे इस अगले कार्यक्रम में यानी कि विश्व भारती में और जानकारी इस खबर पर हम लाएंगे। इससे पहले कि कार्यक्रम में विदा लें, चंद खबरें एक बार फिर से सुनते हैं।
बीबीसी समाचार। संसद का मानसून सत्र गतिरोध विरोध और निलंबन के बीच आज से फिर शुरू होगा। पूर्वी पाकिस्तान में बच्चों के यौन शोषण के मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बांग्लादेश की पुलिस का कहना है कि उन्होंने सुंदरबन के जंगलों में गैरकानूनी तौर से छिपे बाघों के 6 शिकारियों को गोली मार दी है। इसराइल के सैनिकों ने एक फिलिस्तीनी को गोली मार दी है जिसने वेस्ट बैंक स्थित एक सर्विस स्टेशन पर एक इसराइली पर चाकू से हमला किया था। बीबीसी समाचार।
तो बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत के इस अंक में इतना ही। आज स्टूडियो संभाल रहे थे राजेश चौहान। विश्व भारती कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। मोहनलाल शर्मा को विदा दें। नमस्कार।